नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। रूस से तेल खरीद पर टैरिफ लगाने वाले अमरीकी विधेयक पर भारत की कड़ी नजर। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत की 1 अरब 40 करोड़ जनता की ऊर्जा सुरक्षा भारत के तेल स्रोत निर्धारण की मार्गदर्शक। भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों से तुरंत और दृढ़ता से निपटने को कहा। ऐसी घटनाओं को व्यक्तिगत प्रतिद्वंदिता से नहीं जोड़ने की सलाह दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ पर्व और अन्य कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए कल से 3 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, प्रसार भारती के वेव्स प्लेटफॉर्म ने 5000 करोड़ रुपए का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया। ईरान में प्रदर्शनकारियों ने देश भर में सार्वजनिक संपत्तियों पर हमले किए, उड़ानें रद्द और इंटरनेट बंद किया गया। खामेनेई ने अशांति के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार बताया। और महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट का 4वां संस्करण आज से शुरू। मुंबई में पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और वर्तमान चैंपियन मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। और अब समाचार विस्तार से। भारत अमरीकी कांग्रेस में रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर उच्च शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर बारीकी से नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत वैश्विक बाजार की बदलती गतिशीलता और अपनी 1 अरब 40 करोड़ की आबादी की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न स्रोतों से सस्ती ऊर्जा प्राप्त करने की अनिवार्यता पर चलता है। उन्होंने कहा कि भारत और अमरीका की पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते में रुचि है और वे इसे जल्द से जल्द पूरा करने के लिए तत्पर हैं।
इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स वर कमिटेड।
भारत और अमेरिका ने पिछले साल 13 फरवरी को ही द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। तब से दोनों पक्षों के बीच कई दौर की बातचीत हुई है। कई मौकों पर हम समझौते के बेहद करीब पहुंचे हैं। हमारी रुचि दोनों देशों के बीच लाभकारी व्यापार समझौते में है और हम इसे जल्द अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद करते हैं।
एंड लुक फॉरवर्ड टू कंक्लूडिंग इट।
अमेरिका के वाणिज्य मंत्री के हाल के बयान पर उन्होंने कहा कि खबरों में जिन चर्चाओं का उल्लेख किया गया है वे सटीक नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल 8 बार फोन पर बातचीत की है और इस दौरान व्यापक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों की घटनाओं के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि इनसे तुरंत और दृढ़ता से निपटना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं को व्यक्तिगत प्रतिद्वंदिता, राजनीतिक मतभेद या बाहरी कारणों से जोड़ने की प्रवृत्ति चिंताजनक है। गृहमंत्री अमित शाह देश में मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए किए जा रहे सामूहिक राष्ट्रीय प्रयासों की समीक्षा और आकलन के लिए नई दिल्ली में शीर्ष स्तरीय नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 9वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में मंत्रालयों और विभागों के प्रमुख हितधारकों के साथ साथ राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि भी भाग ले रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही।
पिछले 10 वर्षों में हम लोगों ने जो मेहनत की है उसका परिणाम अब दिखाई देने लगा है। पहले डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन लगभग 2014 तक 46,000 करोड़ यानी केवल 46,000 करोड़ रुपए होता था और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आज हम 1.5 लाख करोड़ 1.51 लाख करोड़ से अधिक का डिफेंस प्रोडक्शन भारत की धरती पर कर रहे हैं।
श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निर्यात में भी कई गुना वृद्धि हुई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ पर्व और अन्य कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए कल से 3 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। श्री मोदी कल सोमनाथ में ओमकार मंत्रोच्चारण में शामिल होंगे। वे सोमनाथ मंदिर में ड्रोन शो भी देखेंगे। प्रधानमंत्री रविवार को शौर्य यात्रा में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ पर चल रहा स्वाभिमान पर्व केवल एक आध्यात्मिक संगम ही नहीं है, बल्कि भारत के प्राचीन वैज्ञानिक ज्ञान का उत्सव भी है।
बाण स्तंभ पर अंकित संस्कृत शिलालेख के अनुसार सोमनाथ के इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक पृथ्वी के अंत तक कोई भी भूभाग या द्वीप मौजूद नहीं है। आसमुद्रान दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग का यह संदेश दर्शाता है कि उस युग के विद्वानों को भूगोल और पृथ्वी की संरचना का कितना सटीक ज्ञान था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित यह पर्व नई पीढ़ी को भारत के इस गौरवशाली इतिहास और वैज्ञानिक सोच से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम है। विदेशी आक्रमणों और विनाश के बावजूद सोमनाथ मंदिर का पुनरुत्थान और यह बाण स्तंभ भारत की अजय अस्मिता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण को भी प्रदर्शित करता है। स्वाभिमान पर्व के माध्यम से सोमनाथ की यह विरासत आज के आधुनिक संदर्भ में भी देश की सांस्कृतिक चेतना को नई ऊंचाई दे रही है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होगा और 2 अप्रैल तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी को समाप्त होगा, दूसरा चरण 9 मार्च को शुरू होगा। श्री रिजिजू ने बताया कि केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट सत्र के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक आयोजित करने की मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रसार भारती के वेव्स प्लेटफॉर्म को वैश्विक स्तर पर व्यापक सराहना मिली है और इससे 5,000 करोड़ रुपए का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हुआ है। कंटेंट क्रिएटर्स को सशक्त बनाने के लिए डीडी न्यूज पर नए प्लेटफॉर्म क्रिएटर्स कॉर्नर का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि इस नई पहल का उद्देश्य रचनात्मक सामग्री को प्रदर्शित करना और इसे बढ़ावा देना है। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने 1 करोड़ युवाओं को रचनाकार अर्थव्यवस्था से जोड़ने का लक्ष्य रखा है।
एक तरीके से ये नया एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बनेगी। 1 करोड़ एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर्स के माध्यम से आज देश में पैदा हो सकता है, इतना पोटेंशियल इस सेक्टर का है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने वेव्स का लास्ट ईयर प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जिसमें ग्लोबली एवरीबडी हैज अप्रिशिएटेड आवर परफॉर्मेंस एंड आवर कॉन्सेप्ट। टुडे वी आर एबल टू गिव अ न्यू मार्केट टू आवर क्रिएटर।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि क्रिएटर कॉर्नर पहल का उद्देश्य डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है।
क्रिएटर्स कॉर्नर पहल के तहत प्रसार भारती और कंटेंट क्रिएटर्स के बीच साझेदारी के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण और उसके प्रसार को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में समाचार, संस्कृति, कला तथा साहित्य, संगीत और नृत्य, स्वास्थ्य और कल्याण, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा प्रेरणादायक कहानियों से जुड़े विषयों पर कंटेंट दिखाया जाएगा। यह कार्यक्रम सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे डीडी न्यूज पर प्रसारित होगा। हर एपिसोड में अलग अलग विषयों पर आधारित 4 से 6 रील्स या वीडियो शामिल होंगे। इससे डिजिटल क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक विश्वसनीय मंच मिलेगा और प्रसार भारती के व्यापक नेटवर्क के जरिए उनके कंटेंट को देश भर तक पहुंचाया जा सकेगा। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
सक्रिय सुशासन और योजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए प्रधानमंत्री के प्रमुख तंत्र प्रगति ने अपनी 50वीं बैठक के साथ महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री ने 2015 में इसका शुभारंभ किया था। प्रगति ने प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं और जन शिकायतों की वास्तविक समय में निगरानी तथा समाधान को सक्षम बनाकर शासन व्यवस्था में क्रांति ला दी है। ये मंच केंद्र, राज्यों और भारत सरकार के मंत्रालयों को एकल डिजिटल इंटरफेस पर लाकर सहकारी संघवाद का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। विशेष श्रृंखला में आज महिला और बाल विकास मंत्रालय की मातृत्व लाभ योजना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पर एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को सहायता प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक के माध्यम से इस योजना की विस्तार से समीक्षा की ताकि इस योजना का लाभ सभी महिलाओं को मिल सके। इस योजना के तहत महिलाओं को पहले बच्चे के लिए 5,000 रुपए और दूसरी संतान अगर लड़की होती है तो 6,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिया कि लाभार्थियों की पहचान आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से की जाए। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से बाल देखभाल, स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़ी अन्य योजनाओं को जोड़ने की संभावनाओं पर भी विचार करने को कहा। जनवरी 2017 में शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 4 करोड़ से अधिक महिलाओं को 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मातृत्व सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में दी जा चुकी है। प्रगति बैठक के बाद पिछले साल 21 मई से सभी नए पंजीकरण के लिए फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। इस प्रणाली के जरिए अब तक 23 लाख से अधिक लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पोषण ट्रैकर के उपलब्ध आंकड़ों का इस्तेमाल कर लाभार्थियों की सूची तैयार की और घर घर तक पहुँचने का प्रयास किया। स्वास्थ्य जाँच, बेहतर पोषण और वित्तीय जागरूकता को बढ़ावा देकर यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हाइपरसोनिक मिसाइल कार्यक्रम के लिए ठंडा किए गए दीर्घकालिक स्क्रैमजेट इंजन का सफल स्थलीय परीक्षण किया है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक यानी 6,100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। कंबस्टर और परीक्षण सुविधा का डिजाइन और विकास DRDL और उद्योग भागीदारों ने साकार किया। इस परीक्षण ने भारत को उन्नत एयरोस्पेस क्षमताओं में अग्रणी स्थान मिला दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम के लिए एक ठोस आधार है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आईपैक प्रमुख प्रतीक जैन के कार्यालय और आवास पर छापेमारी और जांच में बाधा डाली। हालांकि अदालत में हंगामे के कारण सुनवाई स्थगित हो गई और न्यायालय ने मामले को 14 जनवरी तक के लिए टाल दिया। आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रतीक जैन के घर और कार्यालय पर छापेमारी के संबंध में ईडी के खिलाफ FIR दर्ज कराई। इस बीच विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने बनर्जी के इस कदम की निंदा करते हुए इसे अपराध और संविधान पर सीधा हमला बताया। भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकारों के नेशनल हेराल्ड अखबार को दिए गए विज्ञापन कोष पर कांग्रेस की आलोचना की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया कि कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की सरकारें पार्टी नेताओं राहुल गांधी और सोनिया गांधी के निजी अखबार को चलाने के लिए करदाताओं के पैसे की बर्बादी कर रही हैं, जबकि ये अखबार 2008 से ही बंद है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में आज 18 महिलाओं सहित 63 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें से 36 माओवादियों पर 1,19,00,000 रुपए से अधिक का इनाम था। हिमाचल प्रदेश में आज सिरमौर जिले के पास एक बस दुर्घटना में 12 लोगों की मौत हो गई और 33 घायल हो गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। ईरान में पूरे देश में इंटरनेट बंद होने, फोन कॉल ठप होने और उड़ानें रद्द होने के एक दिन बाद ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई ने प्रदर्शनकारियों पर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। श्री खामेनेई ने कहा कि दंगाई सार्वजनिक संपत्ति पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान की जनता एकजुट होकर दुश्मनों को परास्त कर देगी। नवी मुंबई में महिला प्रीमियर लीग के पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 118 रन बना लिए हैं। मलेशिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में सिंधु का सामना कल वांग झी यी से होगा। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि भाषा संस्कृति को जीवंत रखती है और हमारा उद्देश्य हिंदी भाषा के माध्यम से देश की संस्कृति और समृद्ध विरासत का प्रसार करना है। विश्व हिंदी दिवस से पहले विदेश मंत्रालय के एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि विदेश मंत्रालय भारतीय प्रवासियों को हिंदी से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रूस से तेल खरीद पर टैरिफ लगाने वाले अमरीकी विधेयक पर भारत की कड़ी नजर। विदेश मंत्रालय ने कहा भारत की 1,40,00,000,000 जनता की ऊर्जा सुरक्षा भारत के तेल स्रोत निर्धारण की मार्गदर्शक। भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों से तुरंत और दृढ़ता से निपटने को कहा। ऐसी घटनाओं को व्यक्तिगत प्रतिद्वंदिता से नहीं जोड़ने की सलाह दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ पर्व और अन्य कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए कल से 3 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रसार भारती के वेव्स प्लेटफॉर्म ने 5,000 करोड़ रुपए का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया। और महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट का 4वां संस्करण आज से शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।